आप हैं SBS हिंदी के साथ। इस बुलेटिन में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दोबारा चुने जाने पर अपनी बुलडोजर जैसी नेतृत्व शैली बदलने का किया वादा। ढुंगाटी कलाकार ब्लैक डगलस ने जीता 2022 का आर्चिबाल्ड पुरस्कार। और टेनिस में इटालियन ओपन में हार के बाद फ्रेंच ओपन के लिए राफेल नडाल की फिटनेस पर मंडरा रहे हैं संदेह के बादल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि यदि वह अगला चुनाव जीतते हैं तो उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उनके पूरे कार्यकाल में उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए हैं। श्री स्कॉट मॉरिसन पर कई राज्य और फेडरल लिबरल सहयोगियों द्वारा धमकाने और डराने का आरोप लगाया गया है। विशेष रूप से पिछले साल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें झूठा भी कहा, जिसे प्रधानमंत्री ने अस्वीकार किया। श्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि जनता उन सभी अलग अलग गेस को नहीं देख पाई है जिनमें वह काम करते हैं।
I know Australians know that I can be a bit of a bulldozer when it comes to issues, and I suspect you guys know that too. As we go into this next period on the other side of this election, I know there are things that are going to have to change with the way I do things, because we're moving into a different time.
उधर फेडरल विपक्ष के नेता एंथनी अल्बनीसी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फर्स्ट नेशंस के लोगों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने की जरूरत है। कुछ दिन पहले कोरल ब्लीचिंग को गर्मियों में समुद्र हीट वेव से जोड़ने वाली एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उसके बाद अब ग्रेट बैरियर रीफ को संरक्षित करने के लिए लेबर दल $194.5 मिलियन का वादा कर रहे हैं। ये फंडिंग किसानों के लिए रीफ की मरम्मत और भूमि प्रबंधन प्रथाओं के लिए उपलब्ध होगी। उत्तरी क्वींसलैंड के क्वींस में इस अभियान को संबोधित करते हुए श्री अल्बनीसी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों के संरक्षण पर कार्य करने की आवश्यकता है।
We need to engage with First Nations people. They have knowledge that has been built up over 65,000 years of how to protect and care for the land and water in this great island continent of ours, Australia. And we need to take advantage of that knowledge. Landcare Rangers is about job creation. It's also about protecting the environment.
नेशनल प्रेस क्लब में हुई बहस में विदेश मंत्री और शैडो फॉरेन मिनिस्टर ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती स्थिरता पर वाद विवाद किया। इस बहस के दौरान चीन के मुद्दे को लेकर दोनों प्रमुख दलों के बीच दृष्टिकोण की कई समानताओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही सोलोमन आइलैंड और बीजिंग के बीच एक सुरक्षा समझौते के जवाब में पैसिफिक क्षेत्र में संबंधों को सुधारने के बारे में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा था कि तय की जाने वाली शर्तें मीडिया में लीक होने से पहले ही इस क्षेत्र में चीन के खतरे के बारे में वे सतर्क थे, लेकिन विदेश मंत्री सुश्री मरीस्पेन ने कहा कि उन्हें पहले इसकी जानकारी नहीं थी।
The question of when we were aware of the particular security agreement, and I have said, and Senator Selger and others have said, is when that security agreement itself was leaked on social media. However, what the senior ministers of the government, including the Prime Minister, have been clear about is that we have worked with my department, with security agencies, in relation to our concerns about China's pursuit of a greater security presence in the region, and particularly in the Solomon Islands.
21 मई को विदेश मंत्री का पदभार संभालने के लिए स्पर्धा करती दोनों महिलाओं ने कहा कि इस क्षेत्र में तनाव को कम करना चीन पर निर्भर करता है। फिलहाल बीजिंग ने ऑस्ट्रेलिया पर भारी व्यापार प्रतिबंध लगा रखे हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी की नई मुख्यमंत्री नताशा फाइल्स होंगी। नॉर्दर्न टेरिटरी के मिनिस्टर माइकल गनर ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था और लेबर पार्टी दल ने 43 वर्षीय नताशा फाइल्स को उनकी जगह चुना है। इस क्षेत्र की वे दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। फाइल्स जो 2012 से संसद में हैं, लेबर पार्टी के वामपंथी दल से जुड़ी हैं। हालांकि श्री गनर की जगह लेने की उम्मीद निकोल मैंशन से की गई थी, क्योंकि श्री गनर भी उसी दल यानी राइट फैक्शन के हैं। सुश्री नताशा फाइल्स का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री गनर जो काम कर रहे थे उसको बरकरार रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि भविष्य में बदलाव होंगे।
I want to provide that stability and that unity that must continue. But yes, we do need to make changes. We need to make sure we keep delivering on those economic opportunities we have. We have come through COVID. There is an amazing abundance of major projects, of economic opportunities, and we are facing significant social challenges. But I will keep that stability and unity, but be focused on those challenges ahead of us.
उधर यूक्रेन का कहना है कि फरवरी में रूसी सेना द्वारा देश पर आक्रमण करने के बाद से उनके कई अस्पतालों को निशाना बनाया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि 570 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया है और उनमें से 101 पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा कि रूसी सैन्य द्वारा किए विनाश का स्तर और तरीका क्रूर और बेवकूफों वाला है। एक तो यह नागरिकों के लिए देखभाल सुविधाएं थीं और दूसरी तरफ रूस ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसे महत्वपूर्ण सामरिक हार का सामना करना पड़ा है।
Russia's strategic defeat is already obvious to everyone in the world and even to those who still communicate with them. Russia just doesn't have the courage to admit it yet. They're cowards and they try to hide the truth behind missile, air and artillery strikes.
इस बीच रूस को युद्ध के मैदान में एक और झटका लगा है। यूक्रेन ने अपने दूसरे बड़े शहर खार्किव के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी कम समय में ही रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। एक महीने पहले कीव और उत्तर पूर्व में भी रूसी सेना को बाहर निकालने पर मजबूर किया गया था। उधर श्रीलंका में प्रधानमंत्री के परिवर्तन के बाद भी जनता में आक्रोश बना हुआ है। देश में सरकार के आर्थिक प्रबंधन और राजनीतिक फेरबदल के खिलाफ लोगों का विद्रोह अभी भी जारी है। विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसा है और इसके कारण ईंधन, भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक आपूर्ति में कमी आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस संकट की वजह से लोग मूलभूत चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं और कारोबार नहीं चला पा रहे हैं। इन समस्याओं के चलते वे चिंतित हैं। वकील गहन गुणतिलके ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाएं नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ देश को कहीं भी लेकर नहीं जाने वाली।
The fact that he chose to declare state of emergency immediately after parliament was adjourned, sequentially is a very problematic thing. But now he's required by law to issue a further proclamation, and it's now been 5 days, and I don't see any sign of this proclamation. To convene parliament and have parliament vote on the emergency.
सिडनी स्थित कलाकार और संगीतकार ब्लैक डगलस ने 2022 आर्चिबाल्ड पोर्ट्रेट प्रतियोगिता में $100,000 का शीर्ष पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार श्री डगलस ने बुंजुलुंग देश पर आधारित एक साथी कलाकार कार्ला डिकिन्स के चित्र पर के लिए जीता। मोबी डिकिन्स शीर्षक वाली पेंटिंग में वुरंजरी महिला को इस साल की शुरुआत में विनाशकारी लिजमोर बाढ़ में घुटने के बल खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर डर के बादल छाए हुए हैं क्योंकि ऊपर से तूफान का खतरा है। ये प्रतियोगिता के 101 साल के इतिहास में आर्चिबाल्ड पुरस्कार जीतने वाले दूसरे एबोरिजिनल कलाकार हैं।
We all know that these institutions can be a bit off-putting for black fellas, and we've been trying to make the change for that to happen. So, like I said in my speech, you know, being the first Koori to paint a Koori that was won the Archibald Prize in 102 years is a pretty special thing. So. I hope that encourages mob to come in here and see what it's all about and see this prize and set yourself that challenge.
उधर भारत में COVID-19 के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2,841 मामले सामने आए और 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 3,295 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। भारत में अब सक्रिय मामलों की दर फिलहाल 0.04% है और हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार भारत का सक्रिय केस लोड वर्तमान में 18,604 है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 69 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53 रुपये और 19 पैसे हो गई है। खेल समाचार में टेनिस में राफेल नडाल इटालियन ओपन से बाहर हो गए हैं। 21 बार के प्रमुख विजेता राफेल नडाल को कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने टूर्नामेंट के अंतिम 16 में 1-6, 7-5, 6-2 से मात दी। नडाल ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें ये बात पता है कि उनके इस प्रदर्शन ने आगामी फ्रेंच ओपन से पहले उनकी फिटनेस पर संदेह पैदा कर दिया है। आपको बता दें, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन खिताब अब तक 13 बार जीता है।
I am a player living with an injury. That's it. No. It's nothing new. No, it's something that is there and unfortunately my day by day is difficult, honestly.
उधर IPL 2022 में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेटों से हराया। टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम 16 ओवर में 97 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 4 चौकों और 2 सिक्सर की सहायता से नाबाद 36 रन बनाए और डैनियल सैम्स ने 3 विकेट लिए। जवाब में मुंबई ने 14.5 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई टीम के तिलक वर्मा ने 34 रन, कप्तान रोहित शर्मा और ऋतिक शौकीन ने 18-18 रन बनाए और टिम डेविड ने 16 रन जोड़े। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मुंबई से मिली हार के बाद प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। और अब सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों में मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में शनिवार को 1 या 2 बौछार की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 21 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में भी छुटपुट बौछार की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक जाएगा। मेलबर्न में कल बारिश के आसार और यहाँ का न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहेगा। कैनबरा में भी बारिश की संभावना, वहाँ का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री। सिडनी में आंशिक बादल रहने की संभावना और वहाँ का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 27 डिग्री। ब्रिस्बेन में कल बारिश की संभावना, वहाँ का न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 25 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 33 डिग्री तक रहेगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में हमेशा की तरह मौसम काफी गर्म रहेगा और वहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 44 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।